ग्रंथा श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या एक, अध्याय का नाम है भक्त शिरोमणि प्रह्लाद। श्री नारद उवाच भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अंतरायतयार्भका मन्यमानो ऋषिकेशम् स्मयमान उवाचः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा भक्ति योगस्य, भक्ति के नियमों का, तत् वे नरसिंह देव द्वारा दिए गए वर, सर्वम उनमें से प्रत्येक, अंतरायतया अवरोध के होने से, भक्ति योग के पथ पर अर्भका बालक रूप प्रह्लाद महाराज, मन्यमानः मानते हुए ऋषिकेशम नरसिंह देव को, स्मयमानः मुस्कुराते हुए उवाच कहा हा भूतकाल में। नारद मुनि ने आगे कहा यद्यपि प्रह्लाद महाराज बालक थे किंतु जब उन्होंने नरसिंह देव द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा, तब वे विनीत भाव से मुस्कुराए और इस तरह बोले। तात्पर्य, भक्ति में सेवा का परम लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां नहीं है अपितु भगवत प्रेम है। इसलिए प्रह्लाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज तथा अनेक भक्त राजाओं ने अत्यंत ऐश्वर्यमान होते हुए भी इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाया, अपने इंद्र तृप्ति में नहीं। वस्तुतः भौतिक ऐश्वर्य का स्वामित्व सदैव भयावह है, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य के वशीभूत होकर मनुष्य भक्ति से पथ भ्रष्ट हो सकता है, तो भी शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक ऐश्वर्य से भ्रमित नहीं होता। अन्य अभिलाषिता शून्यम, इसके विपरीत उसके पास जो कुछ भी रहता है उससे वह शत प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाता है। जब कोई भौतिक संपत्ति से आकृष्ट होता है तो इस संपत्ति को माया द्वारा प्रदत्त माना जाता है, किंतु जब वह इस संपत्ति का पूरा उपयोग सेवा में करता है तो इसे ईश्वर का उपहार या भक्ति को समवर्धित करने के लिए कृष्ण प्रदत्त सुविधा माना जाता है। ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम प्रहलाद महाराज के चरित्र का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और ये प्रहलाद महाराज के प्रसंग का अंतिम अध्याय होगा, भक्त शिरोमणि प्रहलाद। इससे पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस ढंग से प्रहलाद महाराज ने प्रार्थनाएं करके नरसिंह भगवान जी के क्रोध को शांत किया, और जब भगवान नरसिंह देव शांत हो गए तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को बोला कि क्या चाहिए, तुम मुझसे कुछ मांगो, क्योंकि ये मैं लीला करता हूँ इस पृथ्वी पर, इस यहाँ प्रकट होकर सबकी इच्छाओं को मैं पूरा करता हूँ, तो आप मुझसे कुछ मांगिए। लेकिन नारद मुनि बताते हैं कि प्रहलाद महाराज ने कुछ नहीं मांगा। कोई प्रहलाद महाराज सोच रहे थे कि अगर मैं कुछ मांगूंगा ये तो वणिक वाला सौदा होगा, भगवान की हम सेवा करें कुछ मांगने के लिए। और वहीं पर पिछला अध्याय समाप्त होता है और इस अध्याय में दोबारा से नारद मुनि कहते हैं, भक्ति योगस्य तत्सर्वम्। भक्ति योग के ये पाद पर जो विधियां हैं उसके पालन करने में तत्सर्वम्। तत् मतलब जो भी पीछे नरसिंह भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, यानी कि सारे के सारे जो भगवान आशीर्वाद देने को तैयार हैं, तत्सर्वम् सबके सब अंतरायत्या सबके सब भक्ति के मार्ग में बाधा है। अर्भ का, हालांकि प्रहलाद महाराज छोटे बालक हैं, फिर भी वो क्या सोच रहे हैं कि जो भगवान नरसिंह देव उनको आशीर्वाद दे रहे हैं वो मेरे भक्ति के मार्ग में बाधा है। मन ने माना, ये सोचते हुए ऋषिकेशम भगवान को उन्होंने कहा कैसे, स्माय माना, छोड़ा मुस्कुराते हुए वो वाचा, फिर वो बोले। तो बहुत ही सशक्त श्लोक है, पावरफुल श्लोक है, बहुत ही पावरफुल परपट है प्रभुपाद का, और हमें बहुत से इसमें निर्देश मिलते हैं। इसमें हमें मुख्यतः तीन बातों पर हम चर्चा करेंगे कि भक्ति योग का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए एक साधक भक्त को। भगवान कब भक्त को भौतिक ऐश्वर्य देते हैं और कब भक्त से भौतिक ऐश्वर्य छीन लेते हैं, क्यों छीनते हैं, क्यों देते हैं, तो इस सब पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति योग, आप परिस्थिति देखिए कि प्रहलाद महाराज से भगवान बहुत प्रसन्न है, और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि भक्त और भगवान कैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम के वश में भक्त अपने भगवान को कुछ भी समर्पित करने को तैयार है, और भगवान भी उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वो भी अपने भक्त को सब कुछ देने को तैयार है, ये है प्रेम। तो कोई कह सकता है अब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए प्रहलाद के सामने और अपना सब कुछ ऑफर कर रहे हैं कि मांगो क्या चाहिए, सब कुछ लेने को देने को मैं तैयार हूं। तो उस समय भगवान कहां थे जब प्रहलाद महाराज को कितने कष्टों में डाला जा रहा था, इतनी अपमानजनक स्थितियों में हिरण्यकश्यप ने डाला, तब भगवान क्यों नहीं प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा के लिए, कोई ये भी पूछ सकता है। और अब कह रहे हैं बोलो क्या चाहिए, तब कहां थे जब उनको घी की कढ़ाई में तला गया, हाथी के पैर के नीचे दबाया गया, पहाड़ से नीचे फेंका गया, सांपों के कुओं में डाला गया, अग्नि में डाला गया, तब क्यों नहीं आए। तो ये भी भगवान की लीला है, भगवान ने प्रहलाद को इन सब कष्टों से निकाला क्योंकि भगवान हम सबको दिखाना चाहते हैं कि भक्त भगवान से कैसे प्रेम करते हैं। प्रहलाद महाराज ने इन सब मुश्किल परिस्थितियों में भी भगवान को रक्षा के लिए नहीं पुकारा, उनको लगा कि भगवान तो रक्षा कर ही रहे हैं, हर परिस्थिति में वो भगवान का स्मरण करते रहे। तो ये है भक्त और भगवान के बीच में प्रेम। और अब जब भगवान बोल रहे हैं कि बोलो प्रहलाद क्या चाहिए, तुम आयुष्मान हो, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी हो, बोलो मुझसे कुछ मांगो, तो प्रहलाद सोच रहे हैं कि नहीं अगर मैं कुछ मांगूंगा तो ये मेरी भक्ति में बाधा होगी। आप सोचिए, हम लोग कह सकते हैं हाँ जी योगिक सिद्धियां हमारी साधना भक्ति में बाधा हैं, क्योंकि हम लोग जप कर रहे हैं, सुबह मंगल आरती में उठ रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, हमें से शायद ही किसी भक्ति के पास अभी योगिक सिद्धियां होंगी, लगीमा महिमा इष्ट प्राप्ति, यहां से हाथ बढ़ा के रिजर्व बैंक से सारा सोना निकाल लें। कल्पना कीजिए हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं, हम छोटे से छोटा हो जाएं, बड़े से बड़ा हो जाएं, कुछ भी कर लें, नया प्लैनेट बना लें, सर्दी में गर्मी ला दे, गर्मी में सर्दी में ला दे, सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो रही हैं, तब आप कहें नहीं ये मेरी भक्ति में बाधा, मैं नहीं लूंगा। जब हमें कुछ मिलने का हम कह सकते हैं नहीं योगिक सिद्धियां बाधा है, हम जाते नहीं उसकी तरफ। यहां भगवान खड़े हैं, बोलो क्या चाहिए, और प्रहलाद बोल रहे हैं नहीं ये मेरी भक्ति में बाधा है। आप सोचिए इस संसार में जितने भी लोग तरह तरह की तपस्या कर रहे हैं, तरह तरह के धर्मों का पालन कर रहे हैं, उन सब के पीछे उनका एक ही उद्देश्य है कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। और यहां पर प्रहलाद को भगवान सब कुछ देने को तैयार है और प्रहलाद कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। पूरी दुनिया को जो चाहिए उनको मिलता नहीं है, यहां प्रहलाद को जो कुछ मिल रहा है वो प्रहलाद को नहीं चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों से बिल्कुल अलग है, धर्म प्रोजिता केटव अत्र। यहां पे जो साधारण धर्म है झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया भागवतम है, पूरा शुद्ध भक्ति की चर्चा है। और शुद्ध भक्ति कैसे, प्रहलाद महाराज डर रहे हैं। अगले श्लोक में प्रहलाद कहेंगे दूसरे श्लोक में, हे प्रभु हे पुण्य पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के अनुरक्त हूं, अतः आप मुझे इन मोहों के प्रति ललचाइए मत। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूं और भौतिकवादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूं, यही कारण है मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे आपके आशीर्वाद नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज इसलिए मना नहीं कर रहे कि भगवान आप जानते नहीं मैं दिखने में छोटा बच्चा हूं लेकिन हूं परमहंस। इतने कष्टों में मैंने आपको नहीं पुकारा, आप यू शुड नो आई एम समथिंग वेरी स्पेशल। मुझे नहीं चाहिए ये लॉलीपॉप किसी और को दिखाना। भगवान ऐसे प्रहलाद ऐसा नहीं करे, मेरी स्थिति बहुत ऊपर है भगवान, आप जानते ही होंगे, फिर क्यों, आप भी आत्मा राम है मैं भी आत्मा राम हूं, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए है ना, किसी और से बात कीजिए, कोई और छोटा मोटा भक्त ढूंढिए, मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा नहीं कह रहे प्रहलाद। प्रहलाद कह रहे हैं नहीं 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 मुझे ये आशीर्वाद आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते नहीं मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूं, पहले से ही मेरे इतने भौतिक आकर्षण हैं, आप मुझे और लालच दे रहे हैं मैं तो फंस जाऊंगा। मैंने आपकी सेवा ये भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं की, मैंने आपकी शरण इन भौतिक सुखों से ऊपर उठने के लिए की है। कितना महत्वपूर्ण संदेश है हमारे लिए कि भक्ति करते हुए हमारे अंदर भौतिक आकर्षण होते हैं, हम रोज सुबह बोलते तो हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कविता मा जगदीश कामये, लेकिन अंदर अंदर सोच रहे होते हैं क्या मैं भगवान ये नहीं बोल सकता, हाँ धनम हाँ जन्म हाँ सुंदरम। आपके लिए क्या असंभव है भगवान, आपके अंदर तो सारे के सारे विरोधी भाव जो है समन्वित हो जाते हैं, ऑल काइंड ऑफ कंट्राडिक्शन आर रिकनसाइल्ड इन यू। वैसे तो थ्योरेटिकली मैं समझ गया कि भौतिक सुख और भक्ति बिल्कुल विरोधी हैं, लेकिन आप तो सबको समन्वित कर सकते हैं ना, आपके लिए क्या असंभव है। अगर आपके लिए भी ये संभव नहीं है तो फिर आप परम सत्य कैसे हुए। अरे दे दो भाई, आप भक्ति भी करूंगा और साथ साथ दे दो धनम जन्म सुंदरी, थोड़ी आसानी से हो जाएगी भक्ति, क्यों इतने कष्ट देते हो। बोला नहीं चाहिए, जब चाहिए तो बता रहा हूं अंदर से, लेकिन जबरदस्ती कहला रहा हूं नहीं चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं आप जानते हैं मेरे भौतिक आकर्षण हैं, फिर आप मुझे ललचा क्यों रहे हैं, मैंने आपकी शरण इन भौतिक आकर्षणों से ऊपर उठने के लिए ली है, ना कि इनको प्राप्त करने के लिए। ये हमारे भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। कई बार हम भक्ति में जुड़ते हैं, हम देखते हैं कि वाह उस भक्त को ज्यादा यश मिल रहा है, उसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसका तो जब से उसने भक्ति शुरू की है बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, नई नई गाड़ियां और क्या उसका ऐश्वर्य है, तो हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और हमें लगता है कि यही भक्ति में प्रगति का मापदंड है, ज्यादा फॉलोअर्स ज्यादा फेम ज्यादा यश ज्यादा धन ज्यादा ऐश्वर्य नहीं, और हमारी भी इच्छा होती है हमें साथ साथ ये प्राप्त हो, लेकिन वास्तव में ये बंधन के कारण है, इसलिए प्रहलाद महाराज उनसे डर रहे हैं। एक तो हम बोलते हैं कि भक्त बड़े निर्भीक होते हैं, प्रहलाद महाराज जब छोटे बच्चे इतने निर्भीक थे, हर तरह का कष्ट उन्होंने सहा, भजहो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, और यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे मुझे डर लग रहा है। तो प्रहलाद महाराज किसी कष्टों से नहीं डर रहे, प्रहलाद महाराज किसी बीमारी से नहीं डर रहे, प्रहलाद महाराज बुढ़ापे से नहीं डर रहे, प्रहलाद महाराज डर रहे हैं भौतिक इच्छाओं से, प्रहलाद महाराज डर रहे हैं भौतिक ऐश्वर्यों से भौतिक सुविधाओं से, प्रहलाद महाराज डर रहे हैं इस माया में जगत के अस्तित्व से, कि मैं इन सब चक्कर में पढ़कर आपको भूल ना जाऊं, इस भक्ति के पद से भ्रष्ट ना हो जाऊं। इसलिए प्रत्येक भक्त को डर लगना चाहिए माया से। शिला प्रभुपाद यही कहते थे कि मुझे अपने भक्तों से यही शिकायत है कि वो माया से डरते नहीं हैं। हमें डरना चाहिए भौतिक इच्छाओं से, हमें डरना चाहिए अरे मैं भक्ति करूँगा मुझे ज़्यादा यश मिलेगा इस यश से डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए अरे ज़्यादा लोग पीछे पड़ेंगे इससे डरना चाहिए, भक्ति के असली मार्ग से पथभ्रष्ट तो नहीं हो जाऊँगा। जब षट गोस्वामी सब कुछ छोड़कर वृंदावन में गए तो एक पेड़ के नीचे एक रात रुकते थे, फिर दूसरे पेड़ के पास नीचे चले जाते थे अगले दिन। क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि अगर जनता को मालूम चल गया कि इसी पेड़ के नीचे स्वामी जी रहते हैं तो रोज मिलने आएंगे, तो फिर मैं अपने गुरु जो चैतन्य महाप्रभु मुझे भेजा उनकी आज्ञा का पालन कैसे करूँगा, नहीं चाहिए मुझे कोई जन, नहीं चाहिए कुछ नहीं। तो डरना चाहिए भक्त को। हाँ ये अलग बात है कि कई बारी सेवा के लिए सारी सुविधाएं स्वीकार करनी पड़ती हैं, लेकिन केवल सेवा के लिए, अंदर से हमें भयभीत होना चाहिए। और जब हम भयभीत होकर भगवान की शरण लेते हैं तब हम वास्तव में बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं। और अगर हम इनकी इच्छाओं को लेकर भक्ति करेंगे तो हमेशा कुंठित रहेंगे भक्ति करते हुए भी, कि मुझे कम मिला उसको ज्यादा मिला, ये मुझसे छीन ना जाए ये चाहिए, ये सारा कॉम्पिटिशन स्पृहा की भावना हमेशा बनी रहेगी। पहला महाराज कहते नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, पहले ही मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूँ, पहले ही भौतिक आकर्षण है इसलिए मुझे बचाइए, मुझसे इससे डर लग रहा है। तो भक्त को इससे डर लगना चाहिए। और भक्ति करते हुए हमें ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि अब मैं भक्ति कर रहा हूँ अब मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। जय जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। हम लोग इस भौतिक जगत में रहते हुए हम सबकी स्थिति ऐसे हो गई है कि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे हम भगवान से आशा रखते हैं, है ना, जबकि उल्टा होना चाहिए, हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा भगवान हमसे आशा रखते हैं, है ना। हमने बोला भगवान आपने मैंने आपकी भगवद गीता पढ़ी है, आपके वचन सुने हैं, आपने पूरा डिक्लेयर किया हुआ है कि बहुत ही जगत दुखालय है, ठीक है, लेकिन मैंने तो आपकी शरण ली है मैं तो आपका भक्त हूँ तो मेरे लिए कुछ कंसेशन कुछ तो होना चाहिए और ठीक है अगर आपने दुख देने ही हैं तो वही दुख दो जो मैं चाहता हूँ, मेरे को चॉइस दे दो ना कि ठीक है फिर थोड़ा बहुत पेट दर्द हो गया, थोड़ा बहुत यहाँ कुछ कष्ट हो गया, मुझे चुनने दो दुख ले लूँगा, लेकिन ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड भक्तों के साथ भी दुख आ जाए क्या अनुभव है, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिनको इच्छा नहीं होती फिर भी कुछ ना कुछ कष्ट प्राप्त होते हैं, है कि नहीं, तो फिर आता नहीं बेचारे क्या चक्कर क्या है, और आसपास के लोग भी बोलते हैं क्या हो गया रवि आपके साथ, जितनी ज़्यादा माला कर रहे हो उतना ही पता नहीं अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं आपके साथ, ये क्यों हो रहा है। तो हम भगवान से कह सकते हैं ना कि दुखाले हैं ठीक है, आपके वर्ड्स भी सते रहे, हमारा भी कुछ ध्यान रखिए ना, मुझे चॉइस दे दो मैं खुद अपनी जो दुख है मिस्री तो खुद ही चुन लूँ। तो अगर मुझे ऐसी चॉइस मिल जाए कि मैं अपने दुख खुद चुन लूँ तो वो दुख थोड़ी रहेंगे दुख तो तभी होता है कि जो मैं चाहता हूँ वो ना मिले और जो नहीं चाहता वो जबरदस्ती मिल जाए तभी तो दुख है। अगर मुझे ही चॉइस मिल जाएगा भाई आप चुन लो दुख तो फिर दुख थोड़ी रहेगा वो, इसलिए दुखाले है। भगवान कहते हैं ठीक है आप मेरे भक्त हो लेकिन दुख तो आपको मिलेंगे ही, मेरी भक्ति इसलिए करो कि इसे ऊपर उठ सको। ये हम ना सोच के इस भक्ति करें कि नहीं आप मुझे सुख ही सुख प्राप्त होंगे। ये सब बातें जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम देखते हैं कि जब भक्ति करते हुए हमारे जीवन में कुछ कष्ट आते हैं तो अच्छे अच्छे भक्तों का विश्वास डगमगा जाता है ना। हमें भक्ति करते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक उपलब्धियां भक्ति का परम लक्ष्य नहीं है, हमें अपनी भक्ति को मापना नहीं चाहिए ना ही भक्ति को एक्सचेंज करना चाहिए भौतिक उपलब्धियों के लिए। और हमें तैयार रहना चाहिए कि इस भौतिक जगत दुखालय है तो दुख आएंगे ही आएंगे, हमारा प्रेम उस मात्रा में प्रकट होगा जितना उन हर परिस्थिति में हम भगवान की सेवा में लगे रहें। ये श्लोक जो नारद मुनि ने बोला है ये बिल्कुल हमारे लिए एक आईने का कार्य कर रहा है। अगर इसको हम ध्यान से पढ़ें और समझें तो हमें मालूम चल जाएगा कि हम अपनी भक्ति में कितने शुद्ध हैं, हमारा प्योरिटी लेवल क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग में प्रारंभ की अवस्था में भक्त जुड़ते हैं भक्ति में चार कारणों से, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत वर्जना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थे ज्ञानी च भर्तर्षभा, धन चाहते हुए दुखी होकर जिज्ञासु या ज्ञानी, ये चार श्रेणी के लोग भगवान की शरण में आते हैं, ये कनिष्ठ अधिकारी हैं। लेकिन भक्तों के संग में आने के बाद, श्रवण करने के बाद, अध्ययन करने के बाद हमारे जीवन का लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए, भक्ति का लक्ष्य केवल प्रेम होना चाहिए, कृष्ण प्रेम। तो हम अब आत्म अवलोकन कर सकते हैं कि इतने वर्ष बिताने के बाद भी भक्ति में क्या अब मेरे जीवन का लक्ष्य प्रेम है कि नहीं, या केवल कहने के लिए है। अगर जीवन का लक्ष्य प्रेम है तो हर परिस्थिति में मैं सेवा करूंगा, अगर जीवन का लक्ष्य प्रेम नहीं है तो भक्ति करते हुए हमेशा जिस इच्छा के साथ मैं भक्ति में आया था वही इच्छा बनी रहेगी कि हाँ मेरे दुख दूर हो जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना। आरती बदल गई, अब हम बोलते नहीं है लेकिन अंदर वही इच्छा, ऊपर से बोले ना धनम जनम ना सुंदरी, लेकिन अंदर यही है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो अभी भी वही इच्छा बनी हुई है और मैं हूं भक्तों के संग में, इसका मतलब मैंने सीखा नहीं कि भक्तों का संग कैसे करना है। मैं भक्तों के संग का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा हूं, मेरे भजन की क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत कमी है, कम भी कर रहा हूं और अच्छे ढंग से नहीं कर रहा हूं। अभी भी वो इच्छा बनी हुई है, तो बिल्कुल ये हमें दिखा रहा है, एक्सपोज कर रहा है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए हमें। जितनी मात्रा में हम शुद्ध होंगे उतनी मात्रा में हमें लगेगा कि हम शुद्धता से बहुत दूर है, जैसा कि प्रहलाद महाराज को लग रहा है। प्रहलाद महाराज की कोई इच्छा नहीं है, एक प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नहीं मैं तो असुर कुल में पैदा हुआ हूं, मेरे पहले से भौतिक आकर्षण है, मैंने आपकी शरण इनसे ऊपर उठने के लिए ली है। तो भक्ति में हम आए हैं इन भौतिक आकर्षणों से ऊपर उठने के लिए, ना कि इनको और चाहने के लिए, ये समझने की बात है। ये हम अपने सुख, स्वसुख, अपने सुख की वासना से भक्ति नहीं कर सकते, ये मटेरियल अटैचमेंट जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज देते हैं, ये आसक्ति हमें बांध के रखेगी, हम सालों साल भक्ति करते रहेंगे कुछ प्रगति दिखाई नहीं देगी, ना हमें संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर अपने सुख की वासना है, कृष्ण को सुख देने की इच्छा प्रकट नहीं हो रही। तो इसलिए भक्तों को, हम सबको बहुत सावधान रहना चाहिए कि इन भौतिक आकर्षणों से हमें डरना चाहिए, ना कि भक्ति का उपयोग करना चाहिए इनको हासिल करने के लिए। ये बहुत ही सूक्ष्म संदेश है, पता नहीं कितना सफल हुए इसको कम्युनिकेट करने में, लेकिन समझने का प्रयास करना है। और हर परिस्थिति में हमें भक्ति की रक्षा करना, ये हमारा असली धन है। इस संसार में लोगों के सारे कार्य धन को कमाने में, धन की रक्षा करने में और सही तरीके से धन को खर्चने में लगता है, हम सबके प्रयास यही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि धन सही ढंग से कमाएंगे, धन की सही रक्षा करेंगे, धन को सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। हम सबके जीवन में धन इतना महत्व क्यों रखता है, क्यों क्यों रखता है धन इतना महत्व? हाँ, क्योंकि धन के पास, धन का मतलब परचेजिंग पावर, हम कुछ खरीद सकते हैं, हम सुख खरीद सकते हैं, हम सोचते हैं सुविधाओं को खरीद कर हम सुख खरीद लेंगे इस धन से। लेकिन वास्तव में भक्तों के हृदय में जो धन है, प्रेम का धन, उससे हम इस संसार के, सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु खरीद सकते हैं। किसको? कृष्ण को, स्वयं कृष्ण को, षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण को हम खरीद सकते हैं उस धन से। तो ये वास्तव में असली शक्ति है। तो ये जो प्रेम धन, जो श्रद्धा हमारे हृदय में है, भक्तों को पूरा प्रयास करना चाहिए हर परिस्थिति में इसको बचा के रखें। ये जो भक्ति का बीज हमें प्राप्त होता है, ये बहुत ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीज। रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भविता मति क्रीड़िए यद्यपि कितो भी लभ्यते। ये जो कृष्ण भक्ति की जो मति है, इसको खरीद लो, कहीं भी मिलती हो इसको खरीद लो। तत् लोल्यम अपे एकलम मूल्यम, उसका जो मूल्य क्या है, लोल्यम, इंटेंस ग्रीड, बहुत लालच। कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, कई कई करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी ये भक्ति में जो मति लगी हुई है ये प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। पहला मरद वही रक्षा करे, नहीं 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 मैं डर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, है ना। तो इसी ढंग से हमें भक्ति करते हुए इसके लक्ष्य के विषय में बहुत क्लियर होना चाहिए कि भक्ति का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। क्यों चाहिए प्रेम? क्योंकि इस प्रेम से हम भगवान को और अच्छे ढंग से प्रसन्न कर पाएंगे। अगर प्रेम पूर्वक हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होंगे। प्रेम पूर्वक अगर हम श्रवण करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होंगे। प्रेम पूर्वक अगर हम कीर्तन करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होंगे। प्रेम पूर्वक हम नृत्य करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होंगे। इसलिए हमें प्रेम चाहिए ताकि भगवान और गुरु को हम और अच्छे ढंग से प्रसन्न कर सके। ये भक्ति का लक्ष्य है। ना कि भक्ति का लक्ष्य ये नहीं कि मैंने भक्ति प्रारंभ की अब मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए और मुझे एक स्पेशल स्टेटस मिलेगा और भगवान के साथ मेरा ये संबंध होगा। नहीं, भगवान हमें हर भौतिक जगत का हर परिस्थिति हर क्षण हमारे लिए एक परीक्षा है, ये परीक्षा है। तो इस ढंग से हम इसको देख सकते हैं। और फिर यहां श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कुछ भक्तों को ऐश्वर्य देते हैं, और हमने ये भी सुना है कि जब भगवान किसी भक्त विशेष कृपा करते हैं तो उस कृपा की पहली इंस्टॉलमेंट है कि उसका सब कुछ छीन लेते हैं। ये पहली इंस्टॉलमेंट है। पर हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज लेक्चर में बता रहे थे कि दूसरे मंदिर में भी कृष्ण है और इस्कॉन के मंदिर में भी कृष्ण है। इस्कॉन के कृष्ण और दूसरे मंदिरों के कृष्ण में थोड़ा सा अंतर है। जो दूसरे मंदिर में कृष्ण है वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सब कुछ देते हैं, और इस्कॉन के जो कृष्ण है वो सब कुछ हर लेते हैं। तभी यहाँ भी बोलते हैं हरे कृष्णा, बोले हरे अभी हर लेते हैं, सब कुछ हर लेते हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कृष्ण से भरी सभा में, क्या है शिव जी के भक्त तो बड़े ऐश्वर्यपूर्ण होते हैं और आपके भक्त बेचारे बड़े गरीब होते हैं, क्या तरीका है बताइए। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और आपके भक्तों की इतनी दुर्गति होती है बेचारे, हरे सारे ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण, अरे शिव जी के भक्त बड़े ऐसे रहते हैं, क्या चक्कर है। तो भगवान ने प्रश्न सुनकर भगवान को गुस्सा नहीं आया क्या, सबके सामने बेइज्जती कर दी कि मेरे भक्त बड़े गरीब होते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस प्रश्न के पीछे बहुत गहरा सिद्धांत है। और भगवान ने बताया बिल्कुल ठीक बात है, यस्य अहम् अनुग्रहं हरिष्यतः धनं शनैः, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले तो मैं उसका धन छीन लेता हूं। जब उसका धन वगैरह सब छीन लिया तो सारे रिश्तेदार बोलते हैं बेकार का आदमी है, कुछ नहीं है, उसके जेब खाली है, बेकार का, भाग यहां से है। सबके सब उसको धक्का मार देते हैं, रिश्तेदारों ने धक्का दे दिया, बिजनेस ठप हो गया, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, किया क्या करेगा, मेरे चरणों की शरण ग्रहण करेगा। तो भगवान किन किन परिस्थितियों में भक्तों से ये उनका ऐश्वर्य छीन लेते हैं और किन किन परिस्थितियों में ऐश्वर्य देते हैं, चाहे वो ऐश्वर्य छीने या ऐश्वर्य दें, दोनों ही परिस्थिति में भगवान कृपा करते हैं। भागवतम के 8वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जब वामन देव प्रकट होते हैं और बलि महाराज को वो बंदी बना लेते हैं, तो वहां पर प्रहलाद महाराज भी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी भी प्रकट होते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस बलि को इंद्रपद का महान ऐश्वर्य आपकी ही देन है और अब उसको आपने ही छीन लिया है। मेरे विचार से आपने दोनों ही बार समान सुंदरता से कार्य किया है। चूंकि स्वर्ग के राजा का उच्च पद उसे अज्ञान के अंधकार में डाले हुए था, अतः आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीन के उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। यानी कि आपने जब उसको स्वर्ग का राजा बनाया तब भी आपने कृपा की, और अब आपने उसे वो छीन लिया तब भी आपने कृपा की। दोनों ही बातों में अति सुंदर शोभनम बोलने प्रहलाद महाराज, ये सुंदर था, आपने उसको ऐश्वर्य दिया ये भी शोभ था, शोभनम था, और आपने छीन लिया ये भी सुंदर है। तो भगवान दोनों ही रूप से कृपा करते हैं। तो कब कब भगवान जनता का सबका ऐश्वर्य छीनते हैं? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सबसे पहली वस्तु तो उसके लिए कि इस बद्ध जीव के अहंकार को काटने के लिए। हम देखते हैं संसार में हर व्यक्ति भगवान को भूले हुए हैं। साइंटिफिक एडवांसमेंट इतना हो गया कि हर कोई अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझ रहा है। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए और अमेरिका के जब ऐश्वर्य को देखा तो प्रभुपाद बोले गॉडलेस सोसाइटी है, इसका ऐश्वर्य याद इन चलेगा नहीं, ये जो संस्कृति है बिल्कुल कोलैप्स होने वाली है, इकोनॉमी कॉलेप्स हो जाएगी, और हम देख रहे हैं हो रही है। जहां पे लोग भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे, वो संस्कृति ज्यादा चल ही नहीं सकती। भगवान सब कुछ हार लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, हम देख सकते हैं, एक पूरा इतिहास से हम सीख सकते हैं। जो जो बड़े बड़े साम्राज्य आए जिन्होंने भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं किया, उनका सर्वनाश हो गया। तो सबसे पहले भगवान बद्ध जीवों के अहंकार को काटने के लिए उनका ऐश्वर्य छीन लेते हैं। भगवान बताते हैं इसी इस प्रसंग में, वामन देव जी के प्रसंग में, कि बद्ध जीव को जब ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है। ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोकों में मैं किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति छीन कर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूं। मूर्ख हो जाता है, पागल हो जाता है, किसी को भी वो आदर नहीं देता, मेरी सत्ता को भी नहीं मानता, इसलिए मैं अनुग्रह क्या करता हूं, उसका सारा कुछ छीन लेता हूं। ये तो बद्ध जीवों के ऊपर कृपा भगवान की। दूसरी परिस्थिति में भगवान ऐश्वर्य छीनते हैं जब कोई साधक भक्त भक्ति भी करना चाहता है, साथ साथ ऐश्वर्य भी चाहता है ना। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को मध्य लीला में बता रहे हैं, कृष्ण कहे आमी भजे मांगे विषय सुख, अमृत छोड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। मेरा भजन कर रहा है और साथ में विषय सुख मांग रहा है, अमृत को छोड़कर जहर मांग रहा है, यही बड़ा मूर्ख, ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है। फिर आगे बोले, आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय क्यों दिया, ये तो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तो इसको मैं ये जहर क्यों दूंगा। स्वच्छ अमृत पिलाए, अपना चरणों का अमृत देकर इसको सारे के सारे विषय सुख भुला दूंगा। ये भगवान की विशेष कृपा है। देवी देवताओं की जब कोई भक्ति करता है भौतिक सुखों के लिए तो उसको दे देते हैं, लेकिन उसके हृदय को शुद्ध नहीं करते। लेकिन कोई भौतिक सुखों की इच्छा से भी भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसे अपने चरणों का अमृत देकर उसके हृदय में से इस भोगने की प्रवृत्ति दूर कर देते हैं। तो दूसरी परिस्थिति में भगवान ये ऐश्वर्य छीनते हैं जब कोई व्यक्ति मिश्रित भाव से भक्ति कर रहा होता है। डर तो नहीं लग रहा सुन के आपको, है ना। अगला पार्ट ये होगा कि भगवान ऐश्वर्य भी देते हैं तो वो एंड में रखा, हैप्पी एंडिंग होगा तो थोड़ा सबर रखिए। तो अगर मिक्स फीलिंग है कि मुझे सुख भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए, तो बाहर मतलब अरे भौतिक सुख तो विष के समान है, तभी इसको विषय बोला गया है, इसको हटाओ, मेरे अमृत चरणों का अमृत पान करो, सब भूल जाओगे। तो ये दूसरी परिस्थिति है। तीसरी परिस्थिति में भगवान एक न्योफाइट डिवोटी की, कनिष्ठ भक्त की भक्ति की रक्षा करने के लिए ऐसा करते हैं। इसको मालूम है इसको बहुत ज्यादा धन मिल गया, ये तो भटक जाएगा, है ना, मदमस्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा, नशे में, छीन लो इसको, ये हैंडल नहीं कर पाएगा इतना, है ना। जैसे छोटे बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारा का सारा जो पैसा है मम्मी पापा को जमा कर दे और जेब खर्ची ले ले, उसको उल्टा सीधा दे दिया पैसा तो वो लुटाएगा इधर उधर, तो उसे उसको खाली पॉकेट में नहीं मिलती है, लिमिटेड बस। तो इसी ढंग से भगवान उसे छीन लेते हैं और जितना चाहिए उसके शरीर के निर्वाह के लिए उसको दे देते हैं, पॉकेट मनी दे दे, बाकी सब एक्स्ट्रा पैसा ले लिया। तो इमेच्योर भक्त के भक्ति की रक्षा करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। और चौथी परिस्थिति में भगवान अगर किसी भक्त को बहुत तीव्र गति से अपने शरण में लाना चाहते हैं और एक अच्छा भक्त किसी परिस्थिति से अटक गया है, उसकी भक्ति को में और तीव्रता लाने के लिए भगवान उसके ऐश्वर्य छीन लेते हैं। भगवान कहते हैं, मैंने भक्तों को कष्ट में इसलिए डालता हूं ताकि उनका जो अटैचमेंट है और प्रगाढ़ हो जाए और इंटेंसिफाई हो जाए और जल्दी वो मेरी शरण ग्रहण करें। कौन सा उदाहरण आपके सामने आता है कि भगवान ने एक भक्त के ऐश्वर्य को छीन लिया ताकि वो जल्दी उनकी शरण प्राप्त कर ले। शिला प्रभुपाद, हम सब जानते हैं प्रभुपाद की योजना चल रही थी कि मैं धन भी कमाता रहा हूं और उस धन से पुस्तकें छापूंगा। भगवान चाहते थे नहीं, जल्दी से पूर्ण रूप से जल्दी से जल्दी संन्यास लो और प्रचार करो। तो जहां प्रभुपाद, पहले तो प्रभुपाद का बिजनेस खूब बढ़ रहा था, फिर धीरे प्रभुपाद का बिजनेस, जहां प्रभुपाद जाते थे नुकसान ही नुकसान हो रहा था,
और एक बार प्रभुपाद झांसी में लेक्चर दे रहे थे, मालूम चला फैक्ट्री में आग लग गई। प्रभुपाद ने कौन सा श्लोक बोला, यस्या हम अनुग्रहम हरिष्य तद धनम शनहे। प्रभास माँ ये भगवान की इच्छा है, अब फिनिश, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, है ना। तो ये चार परिस्थितियाँ हमने एनालाइज किया। अगर और कोई परिस्थिति तो आप ऐड कर सकते हैं कि कब कब भगवान ऐश्वर्य छीनते हैं। और भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य देते भी हैं, ये ध्यान से सुनिए। दो प्रकार के ऐश्वर्य हैं। एक ऐश्वर्य होता है जो हमें पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है, और एक ऐश्वर्य है जो हमें भगवान स्वयं अपनी इच्छा से देते हैं। भक्तों के जीवन में, यह हमें नोट कर लेना चाहिए, भक्तों के जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, ये कर्मों का फल नहीं है। भक्तों के जीवन में सुख और दुख भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं। और ये भगवान का ये जो सुरक्षा की योजना है, ये जो इंश्योरेंस प्लान है, हम सोच रहे होंगे ये शायद खाली प्रहलाद जैसे उन्नत भक्तों के लिए है। मैं तो अभी पता नहीं भगवान मुझे पहचानते भी होंगे नहीं पहचानते होंगे, है ना। मैं कहाँ, छोटा सा अभी भी माला ही शुरू किया है, वो भी सोते सोते माला करता हूँ, पता नहीं भगवान की लिस्ट में मेरा नाम होगा कि नहीं होगा। नहीं, एक नए से नए भक्त के लिए भी ये इंश्योरेंस प्लान है, ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। और विशेषकर ये चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, जो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में थोड़ी सी भी सेवा करता है चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में, महाप्रभु उसको तुरंत रिकग्नाइज करते हैं और उसको पूरी की पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, और हम देखते हैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से भी देखते हैं। तो अगर हमारे जीवन में भी ये हो रहा है, जब से हमने हरे कृष्ण महामंत्र जब शुरू किया, कई बार भक्त आते हैं, प्रभु जी ये तो मैं पागल हो गया हूँ, ये आपने क्या मंत्र दे दिया है, कैसे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के पास गए थे कि मैं तो पागल हो गया हूँ, कंपन हो रहा है, रोना हो रहा है, हंसी आ रही है। कई मेरे भक्त आते हैं, पागल हो गया हूँ, जब से हरे कृष्ण महामंत्र जब किया लेबर स्ट्राइक हो गई है, सारे के सारे पेमेंट बंद हो गई है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे जीवन में, है लगता है मंत्र सूट नहीं कर रहा है। तो कई बार भक्त छोड़ के चले आते हैं, लेकिन सवर रखना, आपने शुरू किया है हरे कृष्ण महामंत्र का, तो चैतन्य महाप्रभु विशेष रक्षा प्रदान कर रहे हैं हमारे भक्तों के जीवन में, चाहे वो नया भक्त है पुराना भक्त है। सुख और दुख जो भी आ रहे हैं वो भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान का केवल एकमात्र लक्ष्य है कि इस जीव को जल्दी से जल्दी अपनी शरण में लाना है। हर एक जीव की परिस्थिति अलग है, इसको अभी लॉलीपॉप देना है, इसको ऐश्वर्य देने हैं, या इसको थप्पड़ मार के इसे छीनना है, ये भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो हमें दुखी नहीं होना, हमें बस लगे रहना है इस प्रोसेस में। तो भगवान ऐश्वर्य कब देते हैं, भौतिक ऐश्वर्य तब देते हैं भगवान जब देखते हैं कि ये भक्त भक्ति में परिपक्व है। जैसे कि ध्रुव महाराज ने भक्ति शुरू की बहुत ही बच्चों वाली इच्छाओं से, मुझे ऐसा लोग चाहिए जो ब्रह्मा जी के पद से भी ऊपर हो। अब इस भौतिक जगत में ब्रह्म लोक सर्वोच्च है, और बोलते नहीं इससे भी ऊपर चाहिए, बच्चों वाली बात कर रहे हो, ऐसा है ही नहीं सृष्टि में, ऐसा लोग चाहिए जो ब्रह्मा जी लोग से भी ऊपर हो, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बच्चे की इच्छा है, और इतनी तीव्रता से उसने भक्ति की और भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अपने शंख को उनके माथे से छुआ, पूर्ण रूप से वो शुद्ध हो गए। फिर ध्रुव महाराज को बहुत पश्चाताप हुआ, पछतावा हुआ, ये मैंने क्या मांग लिया, ठीक भगवान से ऐसी कोई इच्छा करता है, तो बहुत पछतावा कर रहे थे। तो भगवान बोलते घबराओ मत, घबराओ मत, इसको ले लो, मैं तुम्हें पूरे ऐश्वर्य दूंगा, तुम्हारे लिए एक अलग लोक मैंने बनाया, लेकिन ये तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं डालेगा, तुम्हारी भक्ति चलती रहेगी। और बाद में देखते हैं आगे जाके जब यक्षों से उनका युद्ध होता है और कुबेर उनके सामने प्रकट होते हैं, तो कुबेर उनसे बोलते हैं बोलो क्या आशीर्वाद चाहिए, तो ध्रुव महाराज यही बताते हैं कि मुझे बस भक्तों का संग मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्वयं कुबेर जी से भी ध्रुव महाराज ये कह रहे हैं मुझे भक्तों का संग चाहिए। तो जब भक्त भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं, भक्ति में परिपक्व होते हैं, तो भगवान उनको ये ऐश्वर्य देते हैं। जैसे कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सारे राजा थे और बस खूब ऐश्वर्य था। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ऐसा ऐश्वर्य था जो कि इंद्र के लोक से भी ज्यादा था। तो ये ऐसा ऐश्वर्य क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जो भौतिक ऐश्वर्य है ये भगवान की सेवा में लगाते थे, शत प्रतिशत बिल्कुल पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और इन ऐश्वर्य से वो विचलित नहीं होंगे। जैसे सुदामा आए भगवान के, भगवान ने उनको कुछ नहीं बताया कि मैं तुम्हें सारे संकट दूर कर रहा हूँ, और सुदामा सोच रहा था ठीक ही किया, भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं क्योंकि हो सकता मैं भटक जाता। लेकिन वापस गए तो सब कुछ ऐश्वर्य सुदामा के पास था। इसके बाद ऐसा नहीं पड़ता कि सुदामा भगवान को भूल गए, सुदामा फिर भी भगवान की सेवा में लगे रहे। तो जब भक्त परिपक्व होते हैं तो भगवान उनको सारे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। दूसरी परिस्थिति में उन भक्तों को भगवान ये सारे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं जो कि कष्ट की परिस्थिति में भी भगवान की वैसे ही सेवा करते रहते हैं, जिन्होंने दरिद्रता की अवस्था में भी पूर्ण रूप से दृढ़ता से भगवान की सेवा की, तो फिर वो इस योग्य बनते हैं कि वो भगवान से वो भगवान के इस ऐश्वर्य को भी प्राप्त, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सके। जैसे हम देखते हैं कि इसी भागवतम के वामन देव जी के प्रसंग में भगवान बता रहे हैं कि बलि महाराज असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल हैं। उनके सारे ऐश्वर्य छीन लिए गए तो बलि महाराज को कोई शोक नहीं हुआ कि मैंने क्या गलती कर दी, शुक्राचार्य की आज्ञा का क्यों नहीं पालन किया, मेरे साथ धोखा हो गया। नहीं, उस परिस्थिति में भी वो भगवान के भक्त बने रहे, इसलिए दोबारा भगवान ने उनको सूत्र लोक का स्वामित्व दिया। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने इतने कष्ट सहे, इतनी दरिद्रता देखी प्रभुपाद ने। प्रभुपाद जब वृंदावन से दिल्ली आते थे तो कुछ खाते नहीं थे क्योंकि जो भी उनको मधुकर से मिलता था उसका वो कागज खरीद लेते थे, और जब प्रिंटर के पास पहुंचते थे तो प्रिंटर देख लेते थे, अरे स्वामी जी आपने कुछ खाया भी नहीं सुबह से, कुछ तो लीजिए। प्रभुपाद खाली पेट धूप में जाके भगवत दर्शन बेचते थे और कई बार उनको लू लग गई और उनको बेहोश भी हुए। प्रभुपाद ने कष्ट देखे, और जब प्रभुपाद अमेरिका में गए तो कितना उनको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। प्रभुपाद डीलिंग कर रहे हैं मैन डेट्रॉइट में जाके $350,000 की डीलिंग जेब में, प्रभुपाद कह रहे हैं बस $5 भी नहीं है। ये फिल्मों में हम डायलॉग सुनते थे कि प्रभुपाद ने करके दिखाया, कुछ केवल 40 रुपये लेके इतनी दरिद्रता में प्रभुपाद गए अमेरिका में, उसमें कितना ऐश्वर्य। एक बार एयरपोर्ट में प्रभुपाद को भक्तों को रॉयल फ्राइज गाड़ी लेकर आए तो सारे जो संवाददाता थे वहाँ पर रिपोर्टर थे बड़े द्वेष को गए, क्या है कैसा है संत है रॉयल फ्राइज में घूमता है ना, बोले क्या है आपका दिखावा। प्रभुपाद ये तो कुछ भी नहीं है, गुरु के लिए तो सोने की गाड़ी आनी चाहिए, ये तो लोहे की गाड़ी है, ये क्या है। पहले प्रभुपाद गए उनको छोड़ने जब गए तो कोई भी उनके साथ कोई शिष्य नहीं था, नहीं जब प्रभुपाद जब अमेरिका में जाते थे एयरपोर्ट पे सारे शिष्य खड़े होते थे और खूब नाचते थे। कितने जन मिले, कितने फॉलोअर्स मिले प्रभुपाद को, नहीं प्रभुपाद ने सबको भगवान की सेवा में लगाया। जब प्रभुपाद की गुरु पूजा होती थी तो प्रभुपाद खुद आसन में बैठ के गुरु पूजा गाते थे, सारा का सारा जो प्रभुपाद को मिल रहा है सारा गुरु परंपरा को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। शिष्यों को इस धन को प्रभुपाद ने कभी भी अपने इंद्र तृप्ति के लिए प्रयोग नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद ने कष्टों में सब कुछ सहा, इसलिए प्रभुपाद को भगवान ने इतने सारे ऐश्वर्य दिए। तो दूसरी परिस्थिति में जब हमें ऐश्वर्य मिलते हैं, अगर हमारे इस समय कष्ट की परिस्थिति है, इस समय हमारे अंदर दरिद्रता है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तब हम योग्य बनेंगे। लेकिन हमें इस इच्छा से नहीं करना चाहिए, दर्द में कर रहा हूँ पता नहीं कब वो दिन आएंगे नहीं, भक्त को हमेशा ही निष्काम होकर भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें 100% प्रभुपाद करें सब जो सब ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं भगवान की सेवा के लिए हम ऐश्वर्य तो प्राप्त कर लें और फिर थोड़ा भगवान की सेवा में थोड़ा अपनी सेवा में, ये बहुत खतरनाक है, इससे हमारा पतन हो जाता है। जो कुछ भी हमें सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, चाहे हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं चाहे हम ग्रस्त आश्रम में हैं, इसका 100% उपयोग हमें भगवान की सेवा में लेना चाहिए। क्योंकि ये क्योंकि हमारा शुरू से भौतिक आकर्षण रहा है, हमें डरना चाहिए। जितनी ज़्यादा हमें सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं उतना हमारे अंदर हमेशा डर बैठे रहना चाहिए कि ये मेरे पतन का कारण ना बने, और केवल इसका उपयोग गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए, अन्यथा ये कभी भी हमारे पतन का कारण बन सकती है। श्रीला भक्तिसिंह सेठ ठाकुर महाराज कहते हैं कि कई बार ग्रस्त आश्रम में भक्त होते हैं वो अपने आप को बड़ा वैरागी दिखाते हैं, सीधे साधे कपड़े, सीधा साधा खाना, बड़ा आराम से, बैंकों में करोड़ों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, ये बड़े बड़े वैरागी दे रहे हैं, है ना। इसको बोले शटवित, ये धोखा कर रहा है। अरे भगवान ये नहीं देखते आप मुझे कितना दे रहे हो, भगवान ये देखते हो कितना आपने छुपा के रखा है। भगवान से हम छुपा नहीं सकते, वो ब्लैक मनी है, असली ब्लैक मनी है। वास्तव में सारा का सारा मनी ब्लैक मनी है, मनी बिकॉज इट बिलोंग्स टू द रियल ब्लैक मैन श्याम सुंदर कृष्ण. कोई धन सारा ब्लैक है बिकॉज श्याम सुंदर का है वो. सब कुछ भगवान के लिए, सब कुछ. यानी कुछ तो हम दे दें बस, बहुत प्रभु जी बड़े सादा जीवन जीते हैं, बहुत सादा, थोड़ा बहुत डोनेशन दे दिया, बाकी सब संभाल के रखा हुआ है. किसको धोखा दे रहे हैं? भक्तों के समाज में हो सकता है बड़े भोले बाबा, बहुत वैरागी भक्त हैं, सादा जीवन, दान भी देते हैं, लेकिन रखा कितना हुआ है संभाल के. तो ये धोखेबाजी कृष्ण के साथ नहीं चलेगी. इनकम टैक्स ऑफिसर को धोखा दे सकते हैं, सेल टैक्स वालों को, वैट वालों को धोखा दे सकते हैं, कृष्ण को नहीं. जितना है सब कुछ भगवान की सेवा में, सब कुछ. ये ईमानदारी देंगे तो भगवान बहुत कुछ देंगे, और इतना देंगे क्योंकि बिना इस धन के, ऐश्वर्य के, ये प्रचार नहीं हो सकता, उसके लिए सब कुछ चाहिए. तो इसीलिए अगर हाँ किसी के पास ये भौतिक ऐश्वर्य है, धन है, सब कुछ है, तो क्या कह रहे हैं, ये भगवान द्वारा विशेष उपहार है भक्ति संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए. किसी के पास ये धन ऐश्वर्य है तो उसका पूरा उपयोग भगवान की सेवा में, किसी के पास यश है, मान है, पूजा प्रतिष्ठा है, सबका सब उपयोग भगवान की सेवा में पूर्णतया. और हम देखते हैं जो कोई भी भगवान के सेवा में जुड़ते हैं, भगवान उनको बहुत, ऐसे बहुत से हमारे पास हैं, देखेंगे जब से लोग बोलते हैं हमने भगवान की सेवा शुरू की है, हमें फैक्ट्री में ज़्यादा जाना भी नहीं पड़ता और फिर भी बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. है किसी का अनुभव यहाँ पे? घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, कोई इनकम टैक्स कोई है ऐसा नहीं, मैंने हाथ खड़ा किया पता जी यहाँ पे बैठे थे हा? आप विधायक कवच बता रहे हैं, कृष्ण भाव प्रभु बैठे हैं हमारे, बताइए कृष्ण भाव प्रभु जी, आप अपना एक्सपीरियंस कल आप बता रहे थे. माइक माइक देंगे आप जानते हैं कृष्ण भाव प्रभु रक्तक प्राण प्रभु हैं, दो भाई हैं हमारे, और ये इतना प्रचार कार्य में जुड़ते हैं और ये अपना कुछ एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे थे, बड़ा उत्साह बढ़ा था सुन के.
हरे कृष्णा प्रभु. हाँ, तो मैं दो दिन से प्रभु जी के साथ हूँ गीता मैराथन में.
हाँ,
तो बच्चे का फोन आ भी, पापा जो मीटिंग है उस प्लाट की सेल होना है, आप आ जाओ, वहाँ बिके का भी जगह नहीं, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे. वो 1,52,00,000 रुपये का था, तो फिर वो होते होते प्रयास सेल हो गया, ठीक, पेमेंट भी आ गई, ठीक हो
गया. और डॉक्टर प्राण वो आप कुछ कह रहे थे उसे? शर्माते हैं सब ना, नजर नहीं लगेगी आप, घबराइए.
हरे कृष्ण.
हाँ,
जहाँ भी प्रभु जी अपना दिमाग चलाता हूँ वहाँ तो फल मिलता नहीं है, और जहाँ से कुछ भी उम्मीद नहीं होती है वहाँ से भगवान अता दे देते हैं.
हाँ, हरी वाह. यस, तो अब ये जो बातें आपको बता रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि हम भक्ति करते हुए ये इच्छा रखें कि प्रभु जी मैं अब यहाँ जप कर रहा हूँ, वहाँ फैक्ट्री में सब ठीक कर दो, है ना, मैं आपके नाम में, आप मेरे काम में. इस इच्छा से हमें जप नहीं करना. भगवान चाहे हमें सुख दे चाहे दुख दे, भगवान का आशीर्वाद है. ऐश्वर्य हमसे छीन ले, ये भी भगवान का आशीर्वाद है. हमें ऐश्वर्य प्रदान करें, ये भी भगवान का आशीर्वाद है. हमें प्रार्थना से क्या सीखना है कि हमें इन भौतिक ऐश्वर्यों से डरना है. और ऐसा भी नहीं है मेरे पर जब कष्ट आ रहे हो तो मेरे नाना ये कृपा है, दूसरे पर कोई कष्ट आ रहे हो ये नहीं बोलना चाहिए, बाबा कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर, है ना, उसका बिजनेस चौपट हो गया, बड़े बड़े सौभाग्यशाली हो आप तो, है आपके ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा हो गई. तो ये सिद्धांत अपने ऊपर लगाना है. वैष्णव पर दुखे दुखी, ये नहीं कि बोलो आज तो बहुत फीस्ट हो जाए प्रभु जी आपका बिजनेस चौपट हो गया. तो पर दुखे दुखी, ये सिद्धांत अपने ऊपर हमें लगाना है. जब भी हमारे पास कोई कष्ट आए, सुख आए, सुख में विचलित नहीं होना, तब तक विचलित नहीं होंगे अगर वो जो भी हमें प्राप्त हो रहा है उसको तुरंत हम भगवान की सेवा में लगाए. वेट ना करें, तुरंत 100% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. और उसमें कुछ भी हमने अपना शेयर ले लिया तो फिर इस भाव बंधन का वो कारण बन जाएगा. हरे कृष्ण. किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी?
कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ध्रुव महाराज के टाइम में उन्होंने उनको इतने कष्टों का सामना झेलना पड़ा, कड़ाई में तला गया और सांपों में उसमें तैर दिया गया, तो इसको हम आज के युग से कैसे रिलेट कर सकते हैं कि मतलब के भक्त को उसी लेवल पे कष्ट आएंगे या उनकी भक्ति के लेवल से कष्ट आएंगे, ये कैसे मतलब इसको कैसे रिलेट करेंगे?
देखो, जितने शुद्ध भक्त हैं उनके कष्ट भी उतने ज़्यादा होते हैं। हमारे ऐसे भक्तों को कड़ाई में नहीं तला जाएगा, कड़ाई तलते तो कुछ घी गिर जाएगा हमारे ऊपर। हमें हमारे कष्ट इतने बड़े नहीं होंगे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे कष्टों से विचलित हो जाते हैं। हमारे को इतना सीवियर टेस्ट नहीं देना होगा जितना ध्रुव महाराज प्रभुपाद जी ने दिए, लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे हम भक्ति शुरू करते हैं कुछ ना कुछ कष्ट हमें प्राप्त होते हैं, तो कठिनाइयाँ जो आती हैं।
हमें ऐसे कष्टों का सामना क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो युग और भी ज़्यादा खराब हो गया, पहले तो
कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, दृढ़ता दिखाएंगे, उतने ज़्यादा हाई डिग्री के कष्ट आएंगे। है ना, KG का एग्जाम है और PhD का एग्जाम है, फर्क है। तो उतने ही साथ में योग्यता भी आती जाएगी उसको क्रॉस करने की, भगवान शक्ति भी देंगे, ठीक है ना। हाँ अमित गौतम।
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जिस प्रकार से अंत में आप बता रहे थे कि दूसरों को नसीहत नहीं देनी, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो यही होता है, जब दूसरा कष्ट में होता है तो सारी नसीहत याद आ जाती है, और जब अपने ऊपर बीतती है तो सारी फिलॉसफी भूल जाते हैं। तो क्या इसको किस प्रकार से हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली अपनाने प्रयास?
हाँ, सही है, दूसरों को नसीहत देना आसान है और अपने जीवन में कुछ भी आता है तो सारा भूल जाते हैं कि भगवान की कृपा है, ये है। तो लेकिन ये हम चर्चा कर रहे थे, तो इसका जो हमने समाधान मुझे नज़र आया कि जब हमारा टाइम ठीक चल रहा हो, तथाकथित हमें लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, तो उस समय हमें अपने भक्तों से ऐसे संबंध बनाने चाहिए कि जब मैं कष्ट में जाऊँ तो मुझे नसीहत देने वाला कोई हो। जब फिर ये सिद्धांत हम समझ जाते हैं कि खुद हम नहीं समझा पाते अपने आप को, जो व्यक्ति डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर पाता, एक डॉक्टर भी होता है जब वो बीमार पड़ता है उसे दूसरे डॉक्टर की मदद चाहिए। तो हमारे ऐसे संबंध होने चाहिए कि जब मैं विचलित हो रहा हूँ तो कोई भक्त मुझे संभालने वाला हो और बताए, प्रभु याद करो आपने लेक्चर में खुद बोला था, आपने मुझे समझाया था, आप ही लेक्चर में बोल रहे थे, अब क्या हो गया आपको? तो जब दूसरा नसीहत देता फिर हम सुन सकते हैं। तो ऐसे हमारे संबंध होने चाहिए कि कोई हमसे गलती हो रही है, कोई हमें बचा ले, एक तरीका ये सोचा। दूसरा, हम जितना भक्ति में परिपक्व होंगे, जैसे शिला प्रभुपाद जी अकेले थे अमेरिका में और उनको कोई ऐसा कोई नसीहत देने वाला भी नहीं था, प्रभुपाद कई बार सोचते थे कि मैं डॉकयार्ड में जाता था, देखता था कि भारत को शिप वापस कब जा रही है, लेकिन दोबारा मुझे याद आता था गुरु के आदेश। तो गुरु से जब इतना प्रगाढ़ संबंध होगा, गुरु के आदेश हमारे हृदय में होंगे, तो उन आदेशों को हमेशा स्मरण करते हुए हम विचलित होने से बचे रहेंगे। वो एक बहुत ही परिपक्व स्थिति है, उतना नहीं है तो एटलीस्ट कोई बाहर से हमें भक्त हमें समझाता रहे, रोकता रहे, बचाता रहे, वो कोई कह सकते हैं सिचुएशन में। हाँ हमें ये चेतना रखने की इस माया को हमेशा भगवान की सेवा में लगाना है, अपने लिए उपयोग करते हुए डरना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी ना करें, डर रहे प्रभु प्रभु प्रचार नहीं करूँगा, नहीं प्रभु ऐसे नहीं, जो कुछ भी है सब भगवान की सेवा में लगाना है। इसके लिए डरना चाहिए, कहीं मैं अपने लिए तो कुछ उपयोग नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए हमें डर के रहना चाहिए। होगा, सब होता है ना। अमेरिका वियतनाम में युद्ध चल रहा था, अमेरिका की बहुत बुरी हालत हो रही थी, तो प्रभुपाद ने क्या बोला, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ काउ स्लॉटर, स्टॉप किलिंग ऑफ काउज, तो वियतनाम युद्ध बंद हो जाएगा। होगा, आज पूरे विश्व में दुर्गति क्यों हो रही है, क्योंकि लोग पशुओं का वध कर रहे हैं, काउ स्लॉटर कर रहे हैं, तो हो ही रहा है ना, ठीक है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथार श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ताई गौर प्रेमानंद।